ये आकाशवाणी दिल्ली है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने मंकी पॉक्स वायरस के संदिग्ध मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में प्रदूषण के मुद्दे पर एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज मोतीनगर विधानसभा में दो नए मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन किया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देश के बाद नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्राकृतिक आपदाओं में जनहानि को कम करने के लिए पूर्वानुमान प्रणाली को अधिक सटीक और सरल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्राची प्रिया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने मंकी पॉक्स वायरस के संदिग्ध मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। एम्स ने कहा है कि मंकी पॉक्स से पीड़ित लोगों से संपर्क में आज चुके लोग की पहचान करने और ऐसे मामले से निपटने के तत्कालीन उपाय किए जाएंगे। एम्स की ओर से सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे मंकी पॉक्स के संदिग्ध रोगियों की सारी जानकारी एकत्रित निगरानी कार्यक्रम के तहत अधिकारियों को तुरंत दें और ऐसे मरीजों को अलग रखने का इंतजाम करें। एम्स ने अपने यहां मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 5 बिस्तर आरक्षित किए हैं। इसके साथ ही मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों के उपचार के लिए सफदरजंग अस्पताल को अधिकृत किया गया है। ऐसे मरीजों के लिए समर्पित एम्बुलेंस सेवा का भी इंतजाम किया गया है। इस सेवा के लिए मोबाइल नम्बर 8929683898 से संपर्क किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मंकी पॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद एम्स की ओर से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंकी पॉक्स जानवरों से मनुष्य में फैलने वाला एक वायरस है जिसके लक्षण चेचक के रोगियों में पाए जाने वाले लक्षणों के समान होते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में प्रदूषण के मुद्दे पर एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। पत्र में श्री राय ने लिखा है कि सर्दी के मौसम में दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जिसके समाधान के लिए पड़ोसी राज्यों की एक बैठक बुलाकर एकीकृत रणनीति विकसित की जानी चाहिए। पत्र में श्री राय ने यह भी उल्लेख किया है कि उनकी सरकार के प्रयासों से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है, लेकिन पड़ोसी राज्यों से आने वाले प्रदूषण से शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शहर में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार की लापरवाही का नतीजा शहर के लोग भुगत रहे हैं। बारिश शुरू होते ही जल जमाव की स्थिति बन जाती है और शहर के अधिकतर इलाके पानी में डूब जाते हैं। श्री सचदेवा ने कहा है कि आज सुबह हुई बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे काम पर जाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। श्री सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली सरकार और उसके सभी विभाग तथा विधायक जलभराव की समस्या से निपटने में असफल रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने मांग की है कि स्थायी जलभराव स्थलों की सूची बनाई जाए और वहां सुरक्षा मार्शल नियुक्त किए जाएं, ताकि लोग ऐसे संवेदनशील स्थलों के पास न जाएं। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि वह दक्षिण दिल्ली के रजोकरी क्षेत्र में 1000 से ज्यादा परिवारों को विस्थापित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक तरफ दावा करती है कि वह किसी को नहीं उजाड़ती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी सरकार 50-60 वर्षों से रजोकरी क्षेत्र में रह रहे लोगों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के वजीरपुर स्थित एक नाले में गिरने से हुई एक 7 साल के बच्चे की मौत पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार से परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। श्री यादव ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार कह रही है कि शहर में सब ठीक है, लेकिन जलभराव से दिल्ली में लोगों की लगातार जाने जा रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे शो सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज मोतीनगर विधानसभा में दो नए मोहल्ला क्लीनिकों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही शहर में मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या बढ़कर 545 हो गई है। इस दौरान श्री भारद्वाज ने मोहल्ला क्लीनिक का दौरा किया और मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर श्री भारद्वाज ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सभी मोहल्ला क्लीनिकों में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इलाज कराया है, जहां सभी तरह का इलाज मुफ्त में किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर पाठ्यक्रमों की दाखिला प्रक्रिया से पहले चरण के अंतर्गत कुल 46,171 छात्रों ने दाखिला प्राप्त किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बताया है कि पहले चरण के तहत कुल 97,387 सीटें आवंटित की गई थीं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की पहली वर्षगांठ के अवसर पर देशभर में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी के जामिया मिलिया इस्लामिया के रसायन विज्ञान विभाग द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष अभियानों के बारे में युवाओं को प्रेरित करना है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के विषय पर एक पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्कृष्ट प्रविष्टियों को विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर इमरान अली द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कई विभागों से प्रोफेसर और छात्र शामिल हुए। पिछले वर्ष 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने देशभर के शैक्षणिक संस्थानों को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का आह्वान किया। यह दिवस अंतरिक्ष अन्वेषण में देश की उल्लेखनीय उपलब्धियों का सम्मान करता है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भविष्य की प्रगति को प्रेरित करता है। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए एक शिखर है, जो देश की उन्नति, तकनीकी शक्ति एवं अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान कार्यबल को 3 सप्ताह के भीतर अंतरिम और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत देशभर से डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय कार्यबल सृजित कर रही है। ये कार्यबल ऐसे दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों और संस्थानों के सभी प्रमुखों को पत्र लिखा है। इस पत्र में मंत्रालय ने प्रवेश, निकासी, गलियारे तथा संवेदनशील क्षेत्रों सहित प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। आपात स्थितियों में तत्काल प्रक्रिया के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित करने को कहा गया है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि उचित निगरानी, गश्ती और अस्पताल परिसरों की निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में सुप्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जानी चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि अधिकृत कर्मचारियों को प्रवेश और निकास द्वार पर कड़ी निगरानी के बाद अनुमति दी जानी चाहिए। ड्यूटी के दौरान अस्पताल के सभी कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र दिखाए जाने को अनिवार्य किया जाना चाहिए। सभी अस्पतालों को अस्पताल परिसरों में स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के विरूद्ध हिंसा रोकने के लिए राज्यों को सजा का प्रावधान करने को भी कहा गया है। परिसर के अंधेरे स्थानों की निगरानी की जानी चाहिए। बुनियादी सुविधाओं के साथ पर्याप्त संख्या में सुरक्षित ड्यूटी कक्ष महिला स्वास्थ्य पेशेवरों को दिया जाना चाहिए। रात में 2 महिला स्वास्थ्य पेशेवरों को तैनात करने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। महिला पेशेवरों को ड्यूटी के दौरान परिसरों में रक्षक दल की सुविधा दी जानी चाहिए। रात में महिला पेशेवरों की किसी प्रकार की आवाजाही के लिए सुरक्षित यातायात का प्रबंध किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार करने की भी सलाह दी है। प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में 60 उचित मूल्य दुकानों को जन पोषण केंद्रों में बदलने के प्रायोगिक कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि ये जन पोषण केंद्र उचित मूल्य दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी में मदद करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने उचित मूल्य दुकानदारों के आसानी से कर्ज लेने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इन जन पोषण केंद्रों में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बाजरा, दाल, खाद्य तेल, सोयाबीन और डेयरी उत्पाद जैसी पोषण संबंधी वस्तुएं मिलेंगी। इससे पहले इन उचित दर दुकानों में केवल गेहूं और चावल लोगों को दिया जाता था। यह जन पोषण केंद्र उचित दर दुकानों के डीलरों को अतिरिक्त राजस्व स्रोत और बेहतर मार्जिन प्रदान करेगा। यह पोषण केंद्र भारत के सभी नागरिकों को 2047 तक सभी को अनाज पोषित समाज के दृष्टिकोण से जुड़ा है, जो ये सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिले। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देश के बाद नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द कर दिया है। इससे पहले सरकार ने यूपीएससी को नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन को रद्द करने के निर्देश दिए थे। हाल ही में यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिवों को नियुक्त करने से संबंधित एक विज्ञापन जारी किया था। विपक्षी पार्टियों ने इस विज्ञापन पर प्रश्न उठाए थे। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की अध्यक्ष प्रीति सुदन को लिखे पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया संविधान में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों, विशेषकर आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण सरकार के सामाजिक न्याय ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लेटरल एंट्री को आरक्षण के प्रावधानों के साथ जोड़ने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृतकों की संख्या कम करने के लिए देश की पूर्वानुमान प्रणाली को सरल और अधिक सटीक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सभी भूस्खलन संभावित राज्यों में पूर्व चेतावनी देने वाले बुलेटिन जारी करने के लिए राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र कोलकाता में स्थापित किया जा रहा है।
अभी कुछ दिन पहले हमने देश के कई हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं देखी, जिनमें अनेक लोगों की अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अपने सिस्टम्स को इतना फुल प्रूफ और एक्यूरेट बनाएं कि ऐसे आपदाओं से देश के किसी भी भाग में कम से कम नुकसान हो।
राष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए खनिज उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज सुबह हल्की से तेज बारिश हुई, जिसमें तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 5.7 मिलीमीटर बारिश रिज क्षेत्र और 4 मिलीमीटर बारिश दिल्ली विश्वविद्यालय इलाके में दर्ज की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने मंकीपॉक्स वायरस के संदिग्ध मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में प्रदूषण के मुद्दे पर एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज मोतीनगर विधानसभा में दो नए मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन किया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देश के बाद नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्राकृतिक आपदाओं में जनहानि को कम करने के लिए पूर्वानुमान प्रणाली को अधिक सटीक और सरल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।